The following is a lecture on Vrindavan Vihar from the Srimad Bhagavatam, Canto 10, Chapter 15, verses 9 through 15, on the topic of Krishna's sporting pastimes with the cowherd boys. This lecture is given by His Holiness Radha Govinda Das Goswami in Haridwar, India, on May 2, 2000.
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Namo Bhagavate Vasudevaya. Sri Suka Uvacha. Evam Vrindavanam Srimat. Krishna Pritamanah Pashun. Reme sancharayan adrehe saritrodha susanugaha. So irasna jo hari gun gave. So irasna. Soi rasna jo hari gun gaave, soi rasna jo nainan ki chhavi yah ye chaturta, nainan ki chhavi. Jo mukunda makaranda hi dhyave, jo mukunda makaranda hi dhyave, soi rasna jo hari gun gaave, soi rasna jo hari gun gaave. Nirmal chit to soi saacho, nirmal chit to
soi saacho.
O Krishna bina jehi auran bhaave, Krishna bina jehi auran bhaave. Krishna bina jihi auran bhaave, Krishna bina jihi auran bhaave. Shravan nikijo yah adhikai, shravan nikijo. Suni hari katha sudha ras paave, soi rasna jo hari gun gaave, soi rasna jo hari gun gaave. Karte hi je श्याम ही सेवे, करते ही जे चरणन चली वृंदावन जावे, चरणन चली वृंदावन करते जे श्याम ही सेवे करते जे चरणन चली वृंदावन जावे चरणन चली वृंदावन जावे सूरदास जइए बलिवा को सूरदास सूरदास जइए बलिवा की सूरदास जो हरि जूसो प्रीति बढ़ावे जो हरि जूसो सोई रसना जो हरि गुण गावे सोई रसना जो हरि गुण गावे
वास्तव में वही रसना वही जिह्वा धन्य है या वास्तव में जिह्वा है जो हरि का गुण गाती है और नेत्रों की सुंदरता और चतुरता यही है कि मुकुंद के मुख मकरंद का ध्यान करे वही चित निर्मल है और सच्चा चित है कि कृष्ण बिना जही और न भावे कृष्ण के बिना और कुछ अच्छा नहीं लगे तो वही चित वास्तव में चित है निर्मल और श्रवणन की जो है अधिकाई सुनिहरि कथा सुधा रस पावे श्रवणों की यही श्रेष्ठता है महानता है कि भगवान कृष्ण की कथा को अमृत के समान आस्वादन करके वे पिए करते ही जे श्याम ही सेवे हाथ वही हाथ हैं जो श्याम का सेवन करते हैं और चरण वही चरण हैं जो चली वृंदावन जाए वृंदावन चले जाते हैं सूरदास जइये बलिवा की जो हरि जूसो प्रीति बढ़ावे मैं उस पर अपने जीवन को निर्छावर करता हूँ उसका दास बनता हूँ जो कृष्ण से प्रेम करता है अथवा हमारा कृष्ण प्रेम बढ़ा रहा है सूरदास जइये बलिवा की जो हरि जूसो प्रीति बढ़ावे सोई रसना जो हरि गुण गावे तब प्रारंभ करते हैं भागवत
श्री सुक उवाच एवं वृंदावनम श्रीमत् कृष्णः प्रीतमनः पशुं रेमे संचारयन् अद्रे सरिद्गोदासु सानुगः कल शाम के समय यह कथा हुई कि श्री भगवान किस प्रकार वृंदावन में स्थित वृक्ष भौरे मयूर हरणिया कोयल तथा धरणी तृण विरुद्ध नद्री अद्री नदी इन सबको धन्य कह रहे थे और यह कहते हुए श्री भगवान अब क्रीड़ा प्रारंभ कर रहे हैं वह भी एक क्रीड़ा है वृक्षों से फल तोड़ना पुष्प चयन करना और बातें बोलना वो सब क्रीड़ा ही है लेकिन फिर भी मुख्य रूप से क्या क्या क्रीड़ा वृंदावन में करते हैं श्री सुखदेव गोस्वामी थोड़ा सा वर्णन कर रहे हैं श्री सुकावास एवं वृंदावनम श्रीमत कृष्ण प्रीत मना पसंद रेमे संचारयन अद्रे सरिद रोदह सुसानुग एवं इसका अर्थ ईदृशम वर्णयन इत्यर्थ एवं इस प्रकार वर्णन करते हुए प्रतिदिन और सब जगह श्री कृष्ण श्रीमत वृंदावनम प्रविश्य रेमे इत्यर्थ, श्रीमत वृंदावन में प्रवेश करके और क्रीड़ा प्रारंभ करते हैं। यहां श्रीमत शब्द वृंदावन के लिए है। कोई कोई भक्त कहते हैं कि यह कृष्ण के लिए श्रीमत शब्द भी हो सकता है, हो सकता है दोनों के लिए। कृष्ण श्रीमान है, श्री से युक्त है, अनंत छवि है श्री कृष्ण में, उनको भी श्रीमत कृष्ण। लेकिन वास्तव में यहां वृंदावन के लिए श्रीमत शब्द है। सब प्रकार की समृद्धि से वृंदावन युक्त है। जिस वन में सुख के सागर भगवान को भी सुख मिल रहा है, उस वन के श्री का कौन वर्णन कर सकता है। इसका अर्थ है कि अब तक भगवान को परब्रह्म में, वैकुंठ में और यहां तक कि गोलोक में भी वह सुख उपलब्ध नहीं था जो यहां के वृंदावन में प्रवेश करके उनको सुख मिल रहा है। इसलिए रेमे शब्द का प्रयोग किया जा रहा है। रेमे, रेमे का अर्थ है रमण किए, सुख भोगे, सुख भोगने लगे। कहां कहां? अद्रेह सरित रोधह सु, पर्वत के तटवर्ती नदियों के रोध पर, तटों पर। रोध कहते हैं तट, नदी के पानी को रोकने के लिए तट हैं। तो सरित रोधह सु, मानसी गंगा या श्री जमुना जी आदि के तटों पर श्री कृष्ण रमण कर रहे हैं। रेमे शब्द पर विचार करना चाहिए, बहुत ही अच्छा शब्द है। जब कोई व्यक्ति किसी क्रीड़ा में, किसी वस्तु में सुख पाता है, उसके बिना नहीं रह सकता, तो इसको रमण कहते हैं। मुख्य रूप से श्री कृष्ण गिरिराज जी की तलहटी में रमते हैं, इसलिए अद्रेह शब्द पहले दे रहे हैं सुखदेव गोस्वामी। रेमे संचारयन अद्रेह, पशुन संचारयन रेमे, कहां अद्रेह, अद्री के पर्वत के सरिताओं के तटों पर, अथवा अद्रेह सानुसु और सरित रोधासु। यह अर्थ सानुसु कहते हैं पर्वत की घाटी होती है, बहुत अच्छे अच्छे घास होते हैं, तो उसके तलहटी में जहां गिरिराज की परिक्रमाएं चलती हैं, उन्होंने स्थानों में श्री कृष्ण अधिक रमते थे, गोचारण। पशुन संचार, पशुओं को चराते हुए, शायद भगवान केवल इस इच्छा से जाते, यह दिखा करके कि मैं जा रहा हूं वृंदावन में रमण करने के लिए गोप सखाओं के साथ, तो वह आनंद नहीं आता। तो कृष्ण के सामने एक बहुत ही सुंदर बहाना था, पशु चराने जा रहे हैं, पशुओं को चराते हुए रेमे। तो संचारेन रेमे का अर्थ है पशु भी बड़े सुखी थे, वे भी चर रहे थे, घूम रहे थे। पशु तो अपने भोजन के फेर में घूम रहे थे, पशुओं का सुख है घास खाना, तो उनको चराते हुए, खिलाते हुए और घूम रहे थे, रमण कर रहे थे। प्रीत मना कृष्ण, प्रीत मना कृष्ण स्वयं ही आनंद घन है। कृष्ण का अर्थ ही होता है आनंद की भूमि, सुख की भूमि। जैसा उपनिषद कहता है कृषिर भूवाचक शब्द रच निर्वृत्ति वाचक, कृषि शब्द का अर्थ होता है, कृषि शब्द का अर्थ होता है भूमि, आधार, र का अर्थ होता है निर्वृत्ति, आनंद, सुख। तो जो सुख की आधार है, सुख के आधार है भूमि है। तयोरैक्यम परब्रह्म कृष्ण इत्यभिधीयते, इन दोनों को मिला करके परब्रह्म को कृष्ण कहते हैं, क्योंकि परब्रह्म ही अनंत सुख के निधान है। तो यहां सुखदेव गोस्वामी यह कह रहे हैं कि जो स्वयं ही सुख समुद्र हैं, वे श्रीमत वृंदावन को देखकर प्रीत मना हो गए, बहुत सुखी हृदय हो गया भगवान का, और रमण कर रहे हैं। रमण का प्रकार बता रहे हैं। क्वचिद गायति गायत्सु मदांधालि स्वनुव्रत ही उपगीयमान चरितः स्रग्वी संकर्षणान्वितः प्रीत मनसो रतिमेव वर्णयति क्वचित इत्यादि। प्रसन्न मन से श्री कृष्ण के रति का वर्णन कर रहे हैं, क्रीड़ाओं का वर्णन कर रहे हैं, क्वचित इत्यादि। पहले पूर्वम 10, 12, 7 में बताया गया था केचित वेणुन बाद अंत इत्यादि। जब श्री कृष्ण बच्चा थे, जब बछड़ा चराते थे, तो उस समय भी ये बांसुरी बजाते थे, परंतु अन्य बच्चों से विलक्षण बांसुरी नहीं बजा पाते थे, इसलिए इनके लिए अलग से बांसुरी वादन का उल्लेख सुखदेव गोस्वामी नहीं किए। केचित वेणुन वादयंत यही कहे हैं, कुछ बच्चे बांसुरी बजाते थे, तो उसी में श्री कृष्ण को कह दिए। अब प्रारंभ कर रहे हैं तो श्री कृष्ण के लिए अलग से कह रहे हैं कि बांसुरी बजा रहे हैं। यह बात ध्यान देने लायक है, इसलिए श्रीपाद सनातन गोस्वामी लिखते हैं पूर्वम केचिद वेणुन वादयंत इत्यादि ना बालका नामे व प्रधान्येन तत्त क्रीड़ा उक्ता इदानीं तु प्रीत मनस्त्वेन साक्षात श्रीकृष्णैव इति विशेष। पहले समवेत रूप से सब बच्चों के क्रीड़ा का वर्णन किए थे, अब विशेष रूप से श्री कृष्ण का वर्णन कर रहे हैं। क्वचित कस्मिंश्चित पथे, इस श्लोक में क्वचित शब्द आया है, उसका अर्थ है कभी कभी, अर्थात किसी किसी पथ पर। वृंदावन तो चारों तरफ पथ ही पथ है, बहुत सुंदर सुंदर वृक्ष हैं, सुंदर सुंदर घास, कंटक आदि नहीं है वृंदावन में, इसलिए कहीं भी किसी तरफ व्यक्ति जा सकता है। तो जहां भी श्री कृष्ण जाते हैं, कभी कभी किसी किसी पथ पर मदांधाली स्वनुव्रत ही गायति, अनुव्रत ही गीय मान चरित कृष्ण क्वचित गायति, कभी श्री कृष्ण गाने लगते हैं। यह ध्यान रखना चाहिए कि अकेले श्री कृष्ण के गान का वर्णन, क्वचित गायति कभी गाते हैं, और भौंरों का अनुकरण करते हुए गाते हैं। भौंरे बहुत मधुर स्वर में कहीं कहीं गाते हैं, तो उनके स्वर में स्वर मिलाकर, उनके स्वर से अधिक स्वर नहीं और कम स्वर नहीं, से मिलाकर के श्री कृष्ण एकांत में गाने लगते हैं। ये भगवान का रमण है वृंदावन में, बहुत ही सुंदर लीला है। भौंरों के गान का श्री कृष्ण अनुकरण कर रहे हैं। टीका लिखते समय एक आचार्य कहते हैं कि भौंरों के गान से अधिक ऊंचा स्वर नहीं कर रहे हैं कृष्ण, और कोशिश करते हैं कि नीचे भी ना रहे, जिस स्वर में वो गा रहा है वहीं वो गाते रहते खड़े होकर। और कृष्ण के इस गान को देख करके जो गोप बच्चे हैं, सखा हैं, वे कृष्ण के विषय में गाने लगते, कृष्ण कितने सुंदर हैं, कैसे गा रहे हैं, इसको भी गाने लगते। तो भौरों के लिए सुखदेव गोस्वामी शब्द दे रहे हैं मदांध अलिसु, मदांधेसु अलिसु। भ्रमर कैसे हैं, मद से अंधे हैं। मदेन श्री वृंदावन पुष्प रसस्य पानजेन श्री भगवत सानिध्य सौभाग्य जेन वा अंधेसु सुख विशेषेण निमिलिताक्षेसु। भौरे अंधे हैं, गा रहे हैं, तो अंध का अर्थ करते हैं वृंदावन के दिव्य पुष्प रसों को पीस पी कर वे सुख विशेष में डूबे हैं, इसलिए उनकी आंखें बंद है और गा रहे हैं। अंध होने का ही अर्थ, अथवा महामत्ते सुआ, या वृंदावन के पुष्पों का पराग पी करके भावरे मत्त हैं, तादृशेषु अलसुति गान माधुर्यम अभिप्रेतम, इस प्रकार के भावरे गा रहे हैं। श्रीपाद सनातन गोस्वामी कहते हैं कि गान का माधुर्य व्यक्त किया जा रहा है, तो गायक खूब प्रसन्न मुद्रा में गा रहे हैं, वृंदावन के पुष्प रस को पी करके, चाहे भगवत सानिध्य रस से मतवाले हैं, सुख विशेष में है। तो कोई गायक सुख में हो और सारा साज बाज उसके सामने हो, तो उसके स्वर जो निकलेंगे वो कुछ और ही विलक्षण सुख को व्यक्त करते हैं। तो भौरे वृंदावन में है, गा रहे हैं, वृंदावन के पुष्पों के रस से मतवाले हैं, अथवा भगवान के साथ घूम रहे हैं, इस सौभाग्य से वे और अधिक सुंदर गा रहे हैं। तथा चुक्तम जदुना मृथक संकर्षण, संकर्षण शब्द श्री भगवता से तस्या अपृथकतया गानाभिप्रायण, संकर्षण अन्वित गायती, इससे यह सिद्ध होता है कि श्री बलराम जी भी गा रहे हैं, कृष्ण और बलराम एक साथ भौरों का अनुकरण करते हुए गा रहे हैं, बलराम जी पृथक नहीं गा रहे हैं, संकर्षण अन्वित। और संकर्षण शब्द का क्या अर्थ है? संकर्षण का अर्थ है कि वे सदा कृष्ण को अपने पास आकर्षित किए रहते हैं, इधर उधर नहीं जाने देते। यहां तक कि श्री कृष्ण एकांत में भौरों के गान का अनुकरण नहीं कर पाते थे, थोड़ा भी एकांत में जाते थे तो संकर्षण उनके पास चले जाते थे, अथवा वे डांट करके कर्षित कर लेते थे, अरे कृष्ण उधर क्या जाते हैं, चलो इधर। यदि कृष्ण कहे कि ये सुंदरता देखने जा रहा हूं, नहीं 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 यही रहो, नहीं जाना है, चलो कहां क्या देखना चाहते हो, मैं चलता है। इसलिए संकर्षण शब्द का प्रयोग किया गया, कृष्णम सम्यक कर्षति इति संकर्षण, जो कृष्ण को खींच आकर्षित कर लेते थे कहीं से, वे संकर्षण। जब श्री कृष्ण गाते हैं भावों के साथ तो संकर्षण भी गाते हैं, और कभी कभी कृष्ण पूछते हैं, देखो दाऊ मैं इनके स्वर में स्वर मिला दिया कि नहीं, तो बलराम जी कहते हैं हाँ बिल्कुल ठीक है, जो स्वर है तुम्हारा स्वर भवरों से भी अच्छा है। कभी कभी श्री बलराम जी छिड़ा देते हैं कृष्ण, कृष्ण पूछते हैं कि मैं अच्छा गाता हूं ना, तो बलराम जी व्यंग के स्वर में बोलते हैं, कहते हैं तुम तो चित्र गंधर्व से भी ज्यादा अच्छा गाते हो। ये तो क्या मैं नहीं गाता हूं, बलराम जी कहते मैं तो वही तो कह रहा हूं कि सारे गंधर्व निराश हैं तुम्हारे सामने, वास्तव में निराश हैं, वास्तव में भगवान ऐसा गाते हैं, लेकिन कभी कभी विनोद चलता है। तो संकर्षण साथ में है, और श्री कृष्ण के लिए एक शब्द दे रहे हैं सृग्वी, सृक का अर्थ है वनमाला, पुष्पमाला, और सृग्वी पुष्पमाला श्री कृष्ण धारण किए हैं। श्री वृंदा देवी अपने घर में प्रवेश करने पर श्री भगवान के लिए सबसे सुंदर माला पहना, वो माला लगा करके भगवान वन में घूम रहे हैं, इसीलिए सुखदेव गोस्वामी इसका ध्यान कर रहे हैं, सृग्वी वनमाली माला वाला होकर। और उपगीयमान चरित, श्री कृष्ण के सौंदर्य या क्रीड़ाओं को बच्चे गा रहे हैं, अनुव्रत ही अपने अनुव्रत सखा गा रहे हैं, इस तरह कृष्ण वृंदावन में विहार कर रहे हैं। अनुव्रत ही तदेक प्रीति परई गोपे रूप उप समीपे सर्वो परिणत्वेन वा गीयमान चरितानी जस्य, तो गोप सखा गा रहे हैं तो इनके लिए अनुव्रत शब्द का प्रयोग किया जा रहा है। अनुव्रत का अर्थ है कि तदेक प्रीति परत्वेन श्री कृष्ण के प्रेम में आकर्षित होकर गोप सब साथ में ही रह रहे हैं, इसलिए अनुव्रत शब्द दिया गया, साथ में रहते हैं और सदा गाते रहते हैं। उपगीयमान का क्या अर्थ है? समीप ही गा रहे हैं, क्योंकि उप का अर्थ है समीप, कृष्ण के चरित्र धारे अथवा उपगीयमानम अलिगानात अपि उत्तम तया समाघ्यमानम चरितम अलिगानानुकार लक्षणम जस्स ये उपगीयमान चरित्र है। अथवा श्री कृष्ण जब गान करते हैं या श्री कृष्ण की लीलाओं का गान गोप करते हैं तो भौरों से भी उत्तम विधि से वे गा रहे हैं, यह अर्थ है उपशब्द का। एवं इदम विशेषणम अग्रे अपि पद्य पंचकम जावद अनुवर्त्यम, आगे भी जो श्लोक आएंगे मतलब पांच श्लोकों में इस प्रकार का भाव देखना चाहिए। गोप सखा गा रहे हैं। क्वचिच कलहंसा नाम अनुकूजति कूजितम अभिनृत्यति नृत्यंतम बर्हिणम हासयन क्वचित, कभी कभी सरोवर के निकट हंस कूजते हैं तो श्री कृष्ण ठीक हंस के समान कूजते हैं, उनकी बोली बोलते हैं। अनुकूजितम कूजति, कूजितम अनुकूजति, हंस की बोली का अनुकरण करते हैं। पता नहीं हंस कैसे बोलते हैं, हंस तो इधर दिखाई नहीं देते हैं लेकिन वृंदावन में भरे पड़े हैं तो भी बहुत सुंदर बोलते हैं, तो हंस के बोली का अनुकरण करते हैं। अभिनृत्यंत नृत्यंतम बरहिणम हास्यन क्वचित, और कभी कभी किसी बरहिणम किसी मयूर के साथ सामने नाचने लगते हैं और नाचते नाचते हास्यन क्वचित अपने सखाओं को हंसाते हैं, सखा हंसते अथवा मयूर का तिरस्कार सा कर देते हैं। श्री कृष्ण इतना सुंदर नाचते हैं कि लगता है कि मयूर का परिहास हो गया है। हासयन बरहिणम, यह प्रतिदिन का रमण है। कब श्री कृष्ण कहां मोर के साथ नाचने लगेंगे, कहां हंस के साथ कूजने लगेंगे, कोई निश्चित नहीं रहता है, सर्वत्र यही क्रीड़ा करनी। और एक और श्लोक है, अनु जलपति जलपंतम कल वाक्य सुकम क्वचित, कभी कभी कोई सुक बोलता है तो सुगे की बोली टाइम टाइम बहुत मधुर होती है, तो श्री कृष्ण भी ऐसे बोलते हैं तो सुक से भी अधिक अच्छा बोलते हैं, बहुत मधुर स्वर। आप सबने सुक की बोली सुना होगा, बहुत क्लियर कंठ रहता है स्पष्ट। तो कल वाक्य इति सुकाद अपि उत्तम जल्पनम बोधयत, कल वाक्य से सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि सुख से भी सुगा से भी अधिक है मधुर श्री कृष्ण की बोली। एवं बलगु इति च शरद छेसे ति कोकिल कूजनम सर्वत्राशय श्री वृंदावन स्वभाव, कभी कभी कूजते हैं क्वचित च बल्ग कूजंतम अनुकूजति कोकिलम, कहीं कहीं कोयल बोलते हैं तो श्री कृष्ण उनके बोली के अनुसार जब बोलते हैं तो कोयल से भी अधिक मधुर स्वर उनका होता है। आज भी बच्चे कोयल की बोली का अनुकरण करके बोलते हैं, कुहू कुहू करते हैं, विशेष करके वन में घूमने वाले बच्चे गाय चराने वाले उस प्रायः बोला करते हैं बसंत ऋतु में, तो श्री कृष्ण कोयल की बोली का अनुकरण कर रहे हैं लेकिन कोयल से भी अधिक सुंदर बोल रहे हैं, सुख से भी अधिक सुंदर बोल रहे हैं। मेघ गंभीर आवाचा नाम भीर दूर गान पशुन क्वचिदाहुयति प्रीत्या गो गोपाल मनोज्ञया, और कभी कभी जब पशु दूर चले जाते हैं, दूर गान पसंद वो तो चरते चरते चले जाते हैं, यहां पर श्री हरिश्री जी ने लिखा है कि पशु शब्द क्यों दे रहे हैं, तो इसीलिए कि जो श्री कृष्ण के निकट से दूर चले जाए तृण के लोभ से, तो पशु है तो इसी से तो चले गए, पशु है उनको चाहिए था कि कृष्ण के साथ रहे लेकिन वे तृण के लोभ से इधर उधर दूर चले। अथवा सनातन गोस्वामी पाद जी कहते हैं कि ये पशु जान बुझ करके दूर चले जाते हैं कि श्री कृष्ण उनका नाम ले लेकर पुकारेंगे, इसलिए चले जाते थे, यही अर्थ वास्तव में ठीक। चले जाते हैं।
लेह गंभीरया वाचा नाम भीर दुर्गान पसुन कोचिदाव्यति प्रीत्या गो गोपाल मनोज्ञ। तो दूर गए गए हुए पशुओं को गायों को बुलाते थे कभी कभी। यहां ध्यान रखना चाहिए कि बांसुरी में नहीं बुला रहे हैं इस समय, साक्षात अपनी वाणी से। मेघ गंभीरया वाचा, यदि बंसी में बुलाते तो वैसा लिखा जाता है। इसीलिए श्रीपाद सनातन गोस्वामी जी कहते हैं कि यहां पर साक्षात वचन से बुला रहे हैं, बांसुरी द्वारा नहीं। तो दूर गए हुए पशुओं का नाम ले लेकर के श्री कृष्ण कभी कभी पुकारते हैं, हे धवली, हे कारी, हे गंगा, हे जमुने, हे गंगे, हे जमुने, ये गौओं के नाम थे। या बैल जो थे उनके भी अलग अलग नाम, बछड़ों के भी अलग अलग नाम। बहुत सुंदर सुंदर नाम है भगवान के पशुओं के रहते हैं। दूर गए हो केवल उनका नाम कृष्ण बोल देते थे तो दौड़ कर आ जाते। वे पशु भी जानते थे कि हमारा ये नाम है। वैसे तो सब चिदघन चिन्मय जीव है, वहां जड़ शरीर नहीं है वृंदावन, लेकिन ऐसे भी आजकल भी देखा जाता है कि पशु भी या पक्षी तक और कुत्ता आदि का भी नाम होता है और उनका नाम रखिए तो दौड़ कर आ जाते हैं, व्यस्त होते हैं। तो भगवान उनका नाम ले लेकर के पुकारते थे। अगर वो निकट रहे तो कृष्ण नहीं पुकारते, इसलिए दूर चले जाते हैं जानबूझकर, या किसी झाड़ी में छिप जाते हैं। ये गाय चराने वाले गोप कभी कभी बीच बीच में अपने पशुओं को सहेजा करते हैं। जंगल में गाय चर रही हैं तो कहीं किसी को बाघ न खा जाए। यद्यपि वृंदावन में बाघ और सिंह हिंसक नहीं थे ऐसा लिखा गया है, बहुत प्रेम करते थे एक दूसरे से, कभी कोई सिंह हरिण का वध नहीं किया। लेकिन फिर भी एक लौकिक रीति से वर्णन किया जाएगा तो श्री कृष्ण डरते थे कि कहीं किसी बाघ किसी गाय को बाघ न खा जाए, कोई इधर उधर गिर न जाए, तट से खाड़ी में न गिर जाए, दूर न चला जाए। इसीलिए बीच बीच में वे गिन गिन करके रखते थे, और कोई गाय इधर उधर चली जाती थी तो नाम लेकर के पुकारते थे। भगवान जिस गाय का नाम लेकर पुकारते होंगे कितना स्नेह से, और वह गाय कितना प्रसन्न होती होगी सुन करके नाम। इस तरह से भगवान पुकारते थे। उनके वाणी की विशेषता बता रहे, मेघ गंभीरा वाणी। मेघ जैसे गरजते हैं तो बहुत दूर में आवाज जाती है और बहुत सुंदर लगता है मेघों का गरजना। तो भगवान जब किसी गाय का नाम रखकर पुकारते थे तो बहुत दूर में वो आवाज जाती थी, इसलिए मेघ गर्जन के समान। भाई भगवान को लाउड स्पीकर पर कभी नहीं बोलना पड़ता है। बीच सूत गोस्वामी बोलते थे तो वहां ये सब चीज की व्यवस्था नहीं थी। उन लोगों की बोली मेघ गर्जन के समान थी, बहुत दूर में आवाज जाती है। और क्वचित आहुति प्रीत्या, बड़े प्रेम से सुखमय भाव से भगवान पुकारते थे, बड़े आनंद से उनको पुकारने में आनंद आ रहा था। गो गोपाल मनोज्ञया, गौओं को और गोपों को भगवान की बोली बहुत हृदयंगम होती थी, बहुत सुंदर लगती थी। इसलिए वे लोग भी प्रायः चाहते थे कृष्ण पुकारे। और गो गोपाल मनोज्ञया से तात्पर्य यह है कि कभी कभी श्री कृष्ण जानबूझकर के गोप सखाओं को भी पुकारते थे, हे सुबल, हे श्रीदाम, जोर से बोलते थे, ए सुबल, ऐसे बोलते थे, श्रीदाम, जोर से बोलते थे इस तरह से। और गौओं की तो वे सुन करके आनंद में विभोर हो जाते, इसको मनोज्ञ कर। और पुकारते थे तो केवल पुकार में, सीधा सीधा पुकार नहीं थी, मेरा मित्र या
मेरे प्रिय मेरे भाई कहाँ हो, जल्दी चलो, अब समय हो गया ब्रज में लौटने। जो आवेश रहता था खेल में, तो वन में चूंकि कोई भी गाय या व्यक्ति मनुष्य जल्दी दिखाई नहीं देता है, थोड़े ही देर में इधर उधर लापता हो जाते हैं। घना वन है तो वाणी द्वारा ही कंट्रोल होते हैं सब, शब्द द्वारा। और आजकल वन में लोग गाय चराते हैं, चाहे उस समय भी, तो किसी प्रधान गाय के गले में घंटी बांध देते हैं, तो वो गाय जिधर जाती है तो टन 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 रिमझिम घंटी बजती है, तो उसे पता लगता है कि गौएं इस क्षेत्र में चर रही हैं। दिखाई नहीं पड़ती है लेकिन शब्द से सब पता लग जाता है, और जो उससे भी पता नहीं लगता है तो पुकारते हैं। या एक बच्चा पुकारता है तुम कहाँ हो, तो बोलता है मैं यहाँ हूं, तो दोनों की स्थिति का पता हो जाता है कि वो वहां है, वो वहां है, मैं आ रहा हूं, चाहे तुम आ जाओ, मैं यहाँ हूं जमुना किनारे हूं, चाहे मैं गिरिराज जी के इस क्षेत्र में हूं, यहाँ हूं, जल्दी आओ। तो बोलना, बार बार पुकारना श्री कृष्ण की एक लीला है। सुखदेव गोस्वामी इसको कह रहे गो गोपाल मनोज्ञया, गौओं के लिए और गोपालों के लिए बहुत ही सुखद वाणी थी। मनोज्ञया चित्ताकर्षिण्या वाचा वचनेना एव नतु वंश्या। श्रीपद सनातन गोस्वामी कहते हैं डायरेक्ट वचन से भगवान बुलाते हैं, ऐसा नहीं कि वंशी से, कभी कभी वंशी से बुलाते हैं। बंसी में जब वे बोलते हैं तो बिल्कुल जैसे लगता है कि वो डायरेक्ट बोल रहे हो, इतनी बंसी बजाने की कला है भगवान के पास। तो किसी व्यक्ति को कहा जाए कि अमुक नाम रह करके बंसी में बुलाओ, आएगा ही नहीं। कभी कभी भगवान ने से होड़ करते थे, बच्चे कहते थे हम बंसी बजा देंगे तुम्हारे समान, हम बंसी बजा देंगे। तुम्हारे बंसी की विशेषता है, तुम्हारी विशेषता नहीं है। माँ यशोदा ने कोई बहुत ही विशिष्ट बंसी बनवाया है, तो भगवान कहते थे लो बजाओ, तो वैसे देते थे। बच्चे बजाते थे तो बज नहीं पाता था, फिर वैसा ही दे देते थे। श्री कृष्ण उसको पूछते भी नहीं थे। बच्चों का अधर रस उस बंसी में लगता था, ऐसा सूरदास जी ने गाया है। बजाते थे, कहते थे बैठ, हमसे नहीं बज रहा है, तो श्री कृष्ण कहते थे दो। तो भगवान अपने पीताम्बर से बंसी को पोछते नहीं थे न धोते थे, वही बच्चों का प्रसाद बजाते थे। क्योंकि वहां भगवान बड़े नहीं है, सखा है, साथ में रह रहे हैं, और जाति भी एक ही है। कोई ब्राह्मण और गोप का अंतर होता तो चलो कुछ शुद्ध कर लेते हैं, लेकिन जाति भी एक ही है और सख्य भाव है सब, इसीलिए वे ऐसा करते हैं। सूरदास जी के पद को
रिझत ग्वाल रिझावत श्याम, रिझत ग्वाल रिझावत श्याम, रिझत ग्वाल रिझावत श्याम, रिझत
मतलब गोप सखा सब परम प्रसन्न हो रहे हैं, खुश हो रहे हैं, और भगवान कृष्ण उनको आनंदित करते हैं, खुश रखते हैं।
रिझत ग्वाल रिझावत श्याम, रिझत ग्वाल। मुरली बजावत सखन बुलावत, मुरली बजावत बजावत सखनी बुलावत, मुरली बजावत सुबह
बल सुदामा लय लय नाम सुबल सुदामा लय लय नाम रिझत ग्वाल रिझावत श्याम रिझत ग्वाल रिझावत श्याम रिझत ग्वाल रिझावत श्याम रिझत ग्वाल हसत सखा सब तारी दे दे हसत सखा सब हसत सखा सब तारी दे दे हसत सखा सब नाम हमारो मुरली लेत नाम
सखा कहते हैं मुरली हमारे नाम बोल रही है कितनी अच्छी मुरली है सब हंसते थे ताली बजाते थे
हंसत सखा सब तारी दे दे हंसत सखा सब नाम हमारो मुरली लेत श्याम कहत अब तुमहु बजावहूं श्याम कहत अब तुमहु बजावहूं अपने करते ग्वालन देत अपने करते ग्वालन देत रिझत ग्वाल रिझावत श्याम रिझत ग्वाल रिझावत श्याम
श्याम कहते कृष्ण कहते थे तुम भी बजाओ ये लो हमारी बांसुरी बजाओ अपने करते ग्वाल नहीं देते अपने हाथ से देते थे और कहते थे बच्चे की हम नहीं बजा पाएंगे कैसे बजाते हो जरा बताओ तो कृष्ण अपनी अंगुली को रख कर छिद्रों पर बजा बजा कर दिखाते थे कि ऐसे अंगुली ऐसे रखो ऐसे फूंको और लो बजाओ
मुरली ले ले सब ये बजावत मुरली ले ले सब बजावत
सब ले लेकर के बजा रहे हैं लेकिन केवल फूंक भर रहे हैं उनको बजाने नहीं आ रहा है सब बच्चे लेकिन काहू पे नहीं आवे रूप रूप मतलब कला किसी को कला आ नहीं रही है वो कहते हैं दो हम बजा रहे हैं हमें दो हमें दो हमें दो भगवान कहते हैं लो तुम बजाओ लेकिन किसी पर कोई भी वैसी बांसुरी नहीं बजा रहा है जैसे भगवान बजाते हैं
मुरली ले ले सब ये बजावत मुरली ले ले काहू पे नहीं आवे रूप काहू पे नहीं आवे रूप सूर श्याम तुम्हारे मुख बाजत सूर श्याम
कोई कोई सखा कहता है ये बहुत बदमाश मुरली है ये केवल तुम्हारे ही मुख में बजती है हमारे मुख में बोलती नहीं मौन हो जाती है अरे बजाने नहीं आ रहा है असली बात है कि बच्चे को बजाने नहीं आ रहा है लेकिन वो कहता है भाई ये तुम्हारे ही मुख पर बजती है हम लोगों से बज ही नहीं रही है स
सूर श्याम तुम्हारे मुख बाजत सूर श्याम तुम्हारे मुख बाजत कैसे देखो राग अनूप कैसे देखो राग रिझत ग्वाल रिझावत श्याम रिझत ग्वाल रिझावत श्याम।
तो इस प्रकार भगवान बांसुरी में कलकल नाम बुलाते हैं और बच्चे कहते हैं कि हमें भी सिखा दो, हम भी इस तरह बांसुरी में नाम बोला करेंगे। वो सब वास्तव में परम दक्ष है बांसुरी बजाने में, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि नहीं बजाने आता है। ये सब श्री कृष्ण की लीलाएं हैं और कभी कभी श्री कृष्ण बिना बांसुरी की सहायता के बुलाते हैं पशुओं को और गोपों को। कथम भूतया वाचा मेघस्य गर्जितवत गंभीरया साच महापुरुष स्वभावतः। भगवान का ऐसा स्वभाव ही है कि मेघ के समान गंभीर बोलते हैं। किंवा दूर गाहवाने अत्र तद विशेषापेक्षा। भगवान स्वाभाविक ही मेघ के समान बोलते हैं उच्च स्वर से, लेकिन यहां पर एक विशेष अर्थ है कि दूर गए हुए पशुओं के कान में हमारी ध्वनि चली जाए, इसलिए ऊंचा बोल रहे हैं मेघ गर्जन के समान।
चकोर क्रौंच चक्राभ भारद्वाजांश्च बर्हिणः अनुरौति स्म सत्वानां भीतवद् व्याघ्र सिंहयः।
कभी कभी श्री कृष्ण चकोर क्रौंच चक्राभ और भारद्वाज और मयूर, ये सब पक्षियों के नाम हैं, उनके जैसा उच्च स्वर से बोलते हैं, या कभी सिंह के गर्जने पर बाघ के गर्जने पर जैसे ये पशु पक्षी सब उच्च स्वर से रोने जैसा बोलने लगते हैं, तो वैसे श्री कृष्ण भी बाघ और सिंह के गर्जने पर वृंदावन में थर थर डर जाते हैं और भागते हैं गुफा की तरफ। सभी बच्चों को संकेत करते हैं चलो चलो भागो, बाघ गर्ज रहा है निकट में ही। यद्यपि वृंदावन में कोई भी सिंह या बाघ हिंसक नहीं है, परंतु श्री कृष्ण को सुख देने के लिए भगवान के पार्षद ही सिंह और बाघ के रूप में होकर गरजते, भय रस का स्वादन कराने के लिए। कभी कभी बीच में अकस्मात बाघ बोलता है चाहे सिंह गरजता है तो श्री कृष्ण भागते हैं, एकदम थर थर कांपते हैं कहीं आकर के खा न जाए न करे। और सभी बच्चों को भी संकेत करते चलो चलो भागो भागो इधर भागो, इधर गरज रहा है तो उधर आएगा, इधर गरज रहा है उधर आएगा। भीतवत व्याघ्र सिंह है, भीतवत यदि क्रीड़ा कौतुके न वती प्रत्यय तयो व्याघ्र सिंह यो हिंसरा भावा हिंसरा हिंस अभावे न अपि वस्तुतः ताभ्याम भयाभावत। भीत शब्द नहीं कह रहे हैं सुखदेव गोस्वामी, भीतवत कह रहे हैं, जैसे भयभीत व्यक्ति की तरह कृष्ण बोलने लगते हैं और जोर से पुकारते हैं बच्चों को भागो भागो भागो, तो वास्तव में भयभीत नहीं रहते हैं कृष्ण, क्योंकि भयाभाव है। तो जानते हैं कि ब्रज के वृंदावन के बाघ और सिंह किसी पर अटैक नहीं करते। जदवा जथा अन्य कश्चित बालको भीतो भवे तदवत इत्यर्थ, अथवा दूसरे बच्चे जैसे डर जाते थे वैसे श्री कृष्ण भी डर जाते थे, तथा वह भीतः से आदित्य अर्थ बाल्य लीला स्वभाव, ये तो स्वाभाविक है बच्चे डर जाते हैं। बच्चे तो बिल्ली के म्याऊं म्याऊं करने पर ही डर जाते हैं, यह संशय नहीं करना चाहिए। इस तरह से भगवान विविध लीला कर रहे हैं, सिंह और बाघ के गर्जन से डर जाना, छिपना पेड़ की आर में, चाहे भागना जोर से भागो भागो, किसी गाय को ना खा जाए किसी बच्चे को ना खा जाए, इस तरह से भयभीत लीला करते हैं। भय के अवसर पर श्री कृष्ण की आंखें कैसी होती होंगी सुखदेव गोस्वामी इसका ध्यान करते हैं। भीतवत क्वचित क्रीड़ा परिश्रांतम गोपोत्संगोपबर्हणम स्वयं विश्रम अत्यार्जम पाद संवाहनाद भी। कभी कभी क्रीड़ा में खासकर दंगल में मल्ल युद्ध में श्री बलराम जी थक जाते थे, पसीने की बूंदे आ जाती थी तो वे सोते थे, किसी गोप सखा के गोद में अपना सिर रखकर उसी का तकिया बना करके श्री बलराम जी सोते थे। तो उस समय स्वयं विश्रमयति श्री कृष्ण स्वयं ही उनका परिश्रम दूर करते थे। पाद संवाहनादि भी श्री बलराम जी का चरण दबा करके, चाहे पंखा झल करके, जैसे तैसे ये गीत सुनाकर श्री बलराम जी की थकावट दूर करते थे। विश्रमयति उनका श्रम दूर कर रहे हैं। छोटे भाई हैं इसलिए श्री बलराम जी की सेवा करना स्वाभाविक धर्म है। स्वयं विश्रमयति स्वयं ही, यहां स्वयं शब्द बता रहा है कि जब श्री बलराम जी थक जाते हैं तो श्री कृष्ण दूसरे बच्चे को नहीं कहते हैं कि दाऊ का चरण दबाओ, चाहे पत्ता तोड़ करके लाओ, पंखा झलें, स्वयं पंखा बनाते हैं, स्वयं करने लगते हैं। स्वयं शब्द विश्रमित अथवा स्वयं शब्द का अर्थ है कि कोई सखा नहीं कहता है कि अरे तुम्हारा बड़ा भाई है थक गया तो चरण दबाओ, दूसरा कोई नहीं कहता है, कभी कहना नहीं पड़ता है, स्वयं भगवान चरण दबाते। गोपोत संगोप बरहणम क्वचित क्रीड़या परिश्रांतम अतो गोपोत संगोप बरहणम उच्छीर्षकम जस्य। उत शीर्षक, जो सिर को ऊंचा थोड़ा उठाए उसको उत शीर्षक कहते हैं। उपधान तकिया, किसी गोप सखा के गोद में ही अपना सिर रखकर बलराम जी लेट जाते हैं। तम आर्जम अग्रजम सुप्तम पाद संवाहनाद भी आदिना बीज नादिना स्वयं कृष्ण विश्रमयति विगत श्रमम करोति। यह भी प्रतिदिन की लीला है कि श्री बलराम जी का चरण दबाना, पंखा झलना या पानी पीने के लिए दौड़ करके लाना कि आप थक गए हैं पानी पीजिए आदि सबसे सावधानी था। और संवेक रूप से दोनों की लीलाओं का वर्णन कर रहे हैं। नृत्यतो गायत क्वापि युद्धतो बलगतो मिथः गृहीत हस्तौ गोपालान हसन्तौ प्रससंसतुः। कृष्ण लीला प्रसंग एव द्वयोरपि जुगपत एव आह। कृष्ण लीला प्रसंग में अब सुखदेव गोस्वामी कृष्ण और बलराम दोनों की लीला को एक साथ कह रहे हैं। द्विवचन में नृत्यतः, कभी कृष्ण और बलराम प्रतियोगिता पूर्वक नाचने लगते थे कि मैं अच्छा नाच रहा हूं कि तुम अच्छा नाच रहे हो, अथवा मिला करके जैसे जैसे कृष्ण हाथ ऐसे करते हैं तो बलराम जी भी करते हैं या ताता थे, जो भी है जो भी भाव होता है दोनों एक साथ हाथ उठाते हैं, एक साथ पैर थिरकाना, एक साथ एक स्वर से गाना नाचना, ताता थे झनकारते हैं और वो चरण में नूपुर बांधे रहते हैं वृंदावन में तो चलते हैं जब भी तो दोनों भाई कभी कभी नाचने लगते हैं एक साथ। नृत्य पर गायता पाती है, कभी कभी दोनों गाने लगते हैं। तो जब दोनों गाते हैं तो उस समय गोप सखा नाचते हैं, साथ में ही सब चल रहा है तो सब बच्चे नाचते हैं, सबको एक में मिला करके कृष्ण नचाते हैं, शिक्षा देते हैं कि ऐसे नाचो ये नाचो नाचो, तो नाचने लगते हैं। तो गोचारण क्या कर रहे हैं वो सब बिहार केवल कर रहे हैं वन में आनंद ले रहे हैं। नृत्यतः गायतः, कभी दोनों गाते हैं, जब बच्चे नाचने लगते हैं तो ये दोनों गाते हैं। युद्ध तो, और कभी युद्ध कर रहे हैं। यहां युद्ध का अर्थ है विशेष रूप से मल्ल युद्ध, पहलवानी करना, इसी से तो बच्चे बलवान रहते हैं तो सीख जाता। अथवा युद्ध का अर्थ है कभी कभी कृष्ण और बलराम दो राजा बन करके एक दूसरे से लड़ते हैं, आक्रमण करते हैं राज्य जीतने के लिए, कुछ बच्चे इधर से सैनिक के रूप में सजते हैं, कुछ उधर से सैनिक के रूप में सजते हैं और तलवार लगा, तलवार माने पेड़ के पत्ता लंबा लंबा, और युद्ध करते हैं, राज जीतना है करना है, तो इन सब क्रीड़ाओं में थक जाते हैं। अथवा युद्ध का अर्थ है कॉम्पिटिशन, किसी भी कोई भी क्रीड़ा हो कॉम्पिटिशन हुआ है युद्ध, तो कभी कभी दोनों युद्ध करते हैं। बलगतो मिथा, बलगत बलगन का अर्थ गति विशेष, खींचना गिराने की कोशिश करना, विविध दांव और पेच को बलगु कहते हैं। गृहित हस्तल, और कभी दोनों हाथ में हाथ मिलाकर खड़े होते हैं, जैसे वृंदावन के डीटी के रूप में खड़े हैं, खड़े रहते हैं, तो गोप सखाओं को कहते हैं अब नाचो, तो उन सखाओं की प्रशंसा करते हैं। हसंतौ प्रशंसत, प्रशंसा करते हैं, हंसते हैं और प्रशंसा करते हैं। जदवा अस्य युद्ध्यत इति अनेन एव परेण वा अन्वयः, जदवा तौ क्वापि नृत्यतः क्वापि गायतः इत्येवं क्वापि सर्वैरपि युज्यं किंच क्वापि मिथो गृहीत हस्तौ हसंतौ भवत्। कभी दोनों भाई खड़े होकर के केवल हंसते हैं बच्चों के नृत्य और गीत को देखकर, और प्रशंसा करते हुए हंसते हैं। क्वापि गोपालन हसंत, कभी हंसते हैं या कभी कभी मीठा व्यंग करते हैं, परिहास करते हैं, कहते हैं परम विदग्धा सूरा सुस्निग्धा इत्यादि श्लाघन चक्रतु। वास्तव में प्रशंसा ही करते हैं, लेकिन प्रशंसा में भी थोड़ा सा उपहास मिला करके करते हैं। और किसी किसी गोप सखा को कहते हैं, हंसते हैं, अहो इमे गाने न गंधर्व गणपति गणपति तिरस्कारिण, गंधर्व तिरस्कारिण, ये तो इतने अच्छे नाच रहे हैं, इतना अच्छा गान कर रहे हैं कि गंधर्व भी इनके आगे निरस्त है, ऐसा तो सुंदर गंधर्व भी नहीं गाते हैं। वो तो वास्तविक बात है, नृत्यन विद्याधर विडम्बका, और नृत्य में विद्याधरों को भी हरा देते हैं। युद्धेन त्रिलोकी जीतवरा, और युद्ध कला में इतने विदग्ध हैं कि तीनों लोग को जीत सकते हैं। तो सब प्रकार की क्रीड़ा कर रहे हैं, युद्ध नृत्य गान इत्यादि, परिहासम कुर्वन्तो, एक दूसरे का परिहास करते हुए भी प्रशंसा करते हैं। तत्व तो महात्म विशेष ख्यापनात्, वास्तविकता तो प्रशंसा नहीं है, उनकी महिमा ही बढ़ा रहे हैं, व्यक्त कर रहे हैं, लेकिन परिहास करते हुए हंसी मजाक करते हुए इस तरह भगवान वृंदावन में खेल रहे हैं। मुख्य कार्य है नाच और गान। जब भी आप देखेंगे भागवत में वर्णन है वृंदावन में श्री कृष्ण का, तो नृत्य और गान, बच्चे गाते हैं, कभी ये गाते हैं, कभी कुछ कभी कुछ, इस तरह से क्रीड़ा करते करते जब श्री कृष्ण थक जाते हैं तब क्या होता है। बलराम जी के थकावट का तो वर्णन किए, कृष्ण उनका पाद संवाहन आदि करते हैं, और जब श्री कृष्ण थक जाते हैं तब क्वचित पल्लव तल्पेशु नियुद्ध श्रम कर्षितः वृक्ष मूलाश्रय शेते गोपोत्संगोपबर्हणः उपसंहरिष्यन् विश्राम क्रीड़ां वदन् गोपानां सौभाग्य भरम वर्णयति। अब क्रीड़ा का उपसंहार करते हुए श्री सुखदेव गोस्वामी गोपों के महासौभाग्य का वर्णन कर रहे हैं। क्वचित इति त्रिभि, कभी कभी नियुद्ध श्रम कर्षितः, प्रतियोगिता में या मल्ल युद्ध आदि में श्री कृष्ण थक जाते हैं। नियुद्ध श्रम कर्षितः, नियुद्ध के श्रम से कर्षितः, नियुद्ध का अर्थ ही होता है मल्ल युद्ध, बच्चों से लड़ने में थक जाते हैं। अनंत बल के आगर आगार भगवान युद्ध में थक जाते, अपने उम्र के बच्चे हैं उनके साथ लड़ने में या दौड़ने में कंपटीशन करने में थक जाते, कर्षित कृष हो जाते हैं। यह कर्षित का अर्थ है बिल्कुल कोई क्रिया करने में असमर्थ न रह जाना, थक जाना, लंबी लंबी सांस चलने लगती थी, पसीना आ जाता था, तो कहते थे अब थोड़ा विश्राम करें। जिनको रावण आदि नहीं थका सकते थे, हिरण्यकश्यपु अगर हुए, भगवान गोपों से थक जाते थे। नियुद्ध श्रम कर सीता हो तो उस समय गोपोत संगोप बढ़ना, गोप के गोद में किसी गोप सखा के श्रीदाम या सुबल आदि के गोद में सिर रह करके सो जाते। लेकिन सोने से पहले इनकी एक विशेषता बता रहे हैं, पल्लव तल पे सु, पल्लव का अर्थ पत्ता है, पेड़ के कोमल कोमल पत्तों को तोड़कर गोप सखा तुरंत सज्जा बना देते हैं। तो प्रतिदिन की लीला है तो जान जाते हैं कि थक गया है, तब तो उसके लिए सज्जा बनाते हैं। तो यह कहा जाता है कि पल्लव तल पे एक सज्जा बनाते कृष्ण एक प्रसन्न करेंगे, पल्लव तल पे सुख रहे बहुत पत्तों की बहुत बहुत सज्जाएं बना लेते हैं। तो कृष्ण को थका हुआ जानकर सभी बच्चे दौड़ते हैं और पेड़ के पत्ते कोमल कोमल तोड़ करके उस सज्जा बनाने लगते हैं। श्रीपद सनातन गोस्वामी जी कहते हैं कि बहुत बहुत सज्जा का अर्थ ये है कि उस समय दो चार बच्चे मिल करके एक एक सज्जा बनाते हैं, सब तो उमंग में रहते हैं कि हम कृष्ण के लिए सोने के लिए सज्जा बनाए, पत्ता तोड़ करके कोमल कोमल घास लेकर, तो इस कारण से बहुत सज्जा बन जाता है। तब श्री कृष्ण सबकी रुचि रखने के लिए सबके सज्जा पर शयन करते हैं, और इस बात को वो सखा परस्पर नहीं जान पाते हैं। चार पांच सखा या तीन चार सखा एक जगह कृष्ण की सेवा करते हैं, तीन चार एक जगह करते हैं, और इस तरह से बहुत बहुत सैकड़ों सज्जाएं हो जाती है। इसीलिए पल्लव तल्पेशु शब्द का प्रयोग। कृष्ण पत्तों के सेज पर शयन पर सोते हैं, सेते, यहां सेते का अर्थ है कि खूब अच्छा से पादप प्रसार करके पैर फैला कर हाथ फैला करके और वास्तव में आराम करने लगते हैं। सेते नींद में नहीं सो जाते हैं, अरे गहरी नींद वो वृंदा में गाय चलाना है, इतना नहीं टाइम है कि आप सोइए अब। लेकिन निश्चिंत लेट जाते हैं, इसका अर्थ ये बच्चे चाहते हैं कि इसको नींद आ जाए, जैसे आगे वर्णन किया जाएगा। तो यह बहुत महत्वपूर्ण शब्द है कि कृष्ण सज्जाओं पर सोते हैं,